ईमान को भी थोड़ा समझ के बस मोमिन बन गए? नहीं, सच्चा ईमान अंदर आता है ना तो फिर बंदा रब के आगे झुकता है और इसका असर उसकी नमाजों में झलकता है। फरमाया लजी नहुम फी सलातिहिम खाशियून, वो ईमान वाले जो अपनी नमाजों में इज्जो नियाजियां करते हैं, झुकते हैं, जिनकी नमाज एक एक्सरसाइज नहीं होती, जिनकी नमाज अंदर बाहर से झुकाव का एक मुंह बोलता सबूत होती है। यहाँ लफ्ज़ देखिएगा, सलात जलाने को भी कहते हैं और आजिज होने को भी कहते हैं, क्योंकि नमाज के ये दोनों ही फायदे हैं। एक तो ये कि नमाज गुनाहों को जलाती है और दूसरा ये कि नमाज बंदे के अंदर आजिज़ी लाती है। दूसरी खाशियून, खशा का मफहूम जो डिक्शनरी में आता है वो क्या है? झुकना। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में नमाज में खुशू का मतलब क्या है? कि इंसान अपनी पूरी तवज्जो नमाज में रखे, अल्लाह के सिवा हर चीज़ से मुंह फेर ले। जो बात अपनी जुबान से कर रहे हैं ना तिलावत की सूरत में और जिक्र की सूरत में, उसके मानी पे गौर करे, तदब्बुर करे, ज़ाहरी आदाब का ख्याल रखे, निगाह जो है वो सजदे की जगह पे मरकूज हो, दाएं बाएं ना देखे, आगे पीछे हरकत ना करे, अपनी उंगलियां ना चटकाए, अपने कपड़ों को ही ना समेटता रह जाए, सजदे में जाए तो सजदे की जगह को हाथों से साफ ना करता फिरे, उस शख्स की तरह जिसको अल्लाह के नबी सल्लम ने नमाज में दाढ़ी के बालों से खेलते हुए देखा। तो आपने फरमाया लव खशा कल्बा, अगर इसके दिल के अंदर खुशू होता, लखशाती जवारेहू, तो इसके जवारेह के ऊपर भी इसका असर दिखता। तो अब आप देख लीजिए कि नमाज के अंदर खुशू क्या है, कि बंदा सबसे कट के रब का हो जाए। दो लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं कि नमाज बड़े खुशू व खुदू से पढ़ी। हम खुदू को खुजू कहते हैं, वैसे ज़ात बोलते हैं उर्दू में, फ़र्क क्या है दोनों का? खुशू कहते हैं आज़ा का झुकना, यानी बॉडी पोस्चर, खड़े ऐसे ना हो सीने पे हाथ बांध के जैसे कोई कर्ज ख्वाह अपना कर्ज लेने वापस आया, हुक्म चलाने का अंदाज ना हो। और खुशू क्या है? दिल का झुकाव। दोनों चीज़ें इंसान की झुकी हुई हों अंदर बाखिर। सूरत बकरा आयत 145 में भी हम पढ़ चुके नमाज के तस्करे में कि वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, है ये बड़ा भारी काम मगर खाशीन के लिए बड़ा आसान है। हकीकत यह है कि नमाज पूरी ज़िंदगी का आईना है। अगर नमाज में दिल नहीं लगता तो अल्लाह से ताल्लुक में कमज़ोरी की अलामत है। जिन लोगों की नमाजों में खुशू होता है ना, उनकी तन्हाई की नमाजें और जमात की नमाजें एक ही जैसी होती हैं। जिस तरह मुनाफिक के कॉल और फेल में तजाद होता है ना, इसी तरह उसकी नमाज में भी फ़र्क होता है। अकेले में पढ़ी हुई नमाजें नाक से उड़ाई हुई मक्खी की तरह की हैं और सबके बीच में पढ़ी हुई ऐसे लगता है कि इससे अच्छा कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया वइलुल लिल मुसल्लीन, सूरत माउन की आयत है। खराबी है नमाजियों के लिए, ये क्या बात हुई? नमाजियों के लिए तबाही है, हलाकत है। जी कौन से? अल्लज़ी नहुम फी सलातिहिम साखून, ये वो लोग हैं जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। और क्या करते हैं? अल्लज़ी नहुम योराउन, दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं। आप देखिए कि आप एक बात इमेजिन करें कि आपको किसी जगह काम करना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको किसी ने काम पे रख लिया, पता ही नहीं करना क्या क्या करेंगे जाके। सुबह आप पहुँच गए काम पे, आपने साइन इन कर दिया, आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, करूँ तो क्या करूँ? अब आप कहते हैं अब आया हूँ, काम करना है, कुछ तो करके दिखाऊं। कोई भी आप काम करना शुरू कर दें, मिसाल है चलें बड़े लेवल पे ना बात करें, घरेलू खवातीन की बात कर लें, किसी मेट को बुलाया गया कि आपने आना है कल 9 बजे से 5 बजे आप मेरे साथ यहाँ हेल्प करेंगी घर में, आ गई, कुछ नहीं कहा क्या करना है। अब वो बेचारी आई है ना, तो हो सकता है वो सारे बेडशीट्स बदल के चेंज करके धोने लग जाए, कुछ भी करे सोचें। एंड ऑफ द डे जब बेगम साहिबा आए तो पता चले कि जो करना था वो तो किया नहीं, और जो कल पहले ही नई चादरें बिछाई थी आज फिर उतार के धो दी। क्या चाहिए कि जब वो आए तो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले? बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको कोई इंस्ट्रक्शंस देता है। अब आप इमेजिन करें, हम सुबह उठे, हमने दुआ भी पढ़ ली, कि अल्लाह तेरे नाम से उठी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह मैं उठ गई हूँ, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे एक और ज़िंदगी दी, आज फिर ज़िंदा हुई हूँ, अब करूँ क्या? एक सोच अपनी अक़ल से सोचें, आज क्या करूँ? अब समझ नहीं आ रही तो बंदा नमाज के लिए खड़ा होकर कहता है, अल्लाह इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह प्लीज़ तू बता आज मैं क्या करूँ। ये है खुशू, 5 टाइम इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ये करूँ कि ना करूँ, अल्लाह ताला ये ठीक है कि नहीं, अल्लाह ताला लग तो ये बात बहुत ठीक रही है, कर लूँ, ये बंदा अच्छा लग रहा है, इसको दे दूँ ये काम। क्या आप हर चीज़ के लिए इस्तखारा करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी में बैठे हुए हैं, सड़क पे चल रहे हैं, आपको फैसला करना है, ये नमाज दिन में 5 बार अल्लाह ताला से इंस्ट्रक्शंस लेना है, और आप किसी वर्कर को बुलाएं कि आओ मैं तुम्हें बताऊं आज क्या करना है, और वो अपनी ग्लासेस से खेले, अपने बालों से खेले, इधर देखे उधर देखे, तो आप क्या करेंगे? कि सुन रहे हो कि नहीं, तवज्जो है कि नहीं? स्टूडेंट्स पे क्यों गुस्सा आता है जब वो इधर उधर देखते हैं या ढीली ढाली बातें करते हैं, कि इनका तो दिमाग ही नहीं, मैंने कि नहीं इन दीवारों को पढ़ाना है। तो अब आप जरा इमेजिन करें, जब नमाज में खेल कूद रहे होते हैं, पर्दे के रंग गिन रहे होते हैं, और जाए नमाज की डबियाँ गिन रहे होते हैं, और वेलवेट के कलर चूज कर रहे होते हैं, तो अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा? तो तवज्जो का नाम है खुशू। इन पूरी 10 आयतों पे एक कैसेट है, जन्नत के वारिस, वेबसाइट पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, दावा सीडीज में भी थी, है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उसको सुने, तो हमने उसमें खुशू के फैक्टर्स पे बड़ी बात की है, उसका किस से ताल्लुक़ है, आप कब नमाज़ पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ रहे हैं कि देर से पढ़ रहे हैं, आपने पहना क्या हुआ है, कपड़े कैसे हैं, हाल हुलिया कैसा है, इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आप फारिग हो चुके हैं बाथरूम से कि नहीं, भूखे तो नहीं। तो बहुत डिटेल से 10-15 पॉइंट्स हैं, अगर किसी को अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाना है तो वो सुन ले, उससे इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिए कि वो नमाज नमाज ही नहीं है जिसमें रब की याद नहीं है। अकीमिस्सलात लिज़िक्री, ए मूसा मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। कहाँ पढ़ा आपने? करीब के दौर में पढ़ चुके हैं ना, सूरह तौहा में। फिर उसके बाद जब नमाज जिंदा होती है ना, जब हकीकत में एक बंदा अल्लाह ताला के साथ जुड़ता है, अपनी नमाज को ठीक करता है, तो उसका एक लामुहाला नतीजा, और वो क्या, कि वल्लसीनहुमनिल्लाह्वी मोरिदून, और वो लोग हर बेहुदा अमर से मुंह फेरे हुए होते हैं। यहाँ लफ की बात हुई, लव कहते हैं हर वो कॉल और फेल जो फजूल और बेफायदा हो। अल्लाह ताला मोमिन को बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, मोमिन की सबसे कीमती दौलत उसका वक्त होता है, उसके कंधे पर तो जिम्मेदारियों का एक बारे गिरा है, इसको कहाँ फुर्सत है कि वो बेकार और फजूल कामों में शिरकत करे। इसलिए हर वो सैरो तफरी, हर वो चीज़, हर वो काम जो बेमकसद हो, हर वो चीज़ जिससे आप सिर्फ फन लेते हैं, वो लख में आएगा। लेकिन ऐसी सैर और तफरी जो जिस्मानी सेहत के लिए हो, दिल और कल्ब की ताजगी का बायस हो, वो इसमें दाखिल नहीं है। और आप देखिए कि मोरेदून, एराज करने वाले, क्या पता चल रहा है कि लगवियात का इर्तकाब करना तो दूर की बात, मोमिन तो उधर का रुख तक नहीं करता। उसकी ज़िंदगी में इतना खुशू है नमाजों में, और खुशू का आप अगर एक लफ्ज़ सुकून से भी लिख लें तो बात और ज़्यादा समझ आएगी, कि दिन में 5 बार जो सुकून वाली नमाजें पढ़ लेता है ना, जिसकी ज़िंदगी में हकीकत में सच्चा सुकून आ जाता है, फिर वो लफ्ज़ की तरफ मुंह नहीं कर सकता। अच्छा, ऊपर एक बात भूल गई थी, वो यहाँ लिख लें वहाँ नोट कर लें, कि कद अफलहल मोमिनून में जन्नत में जाने की खुशखबरी भी आती है, कि अल्लाह ताला असल कामयाबी और सुकून और इत्मीनान की चीज़ तो जन्नत में ही देगा ना। इस दुनिया में तो मुश्किलात सहली, वहाँ जाएंगे तो जन्नत मिलेगी। अब आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो आप दर हकीकत उन 5 नमाजों में अल्लाह ताला को इस बात का यकीन दिला रहे होते हैं कि स्टिल आई एम अ मुस्लिम, और मैं जन्नत में इंटरेस्टेड हूँ, मैं वाकई कामयाब होना चाहता हूँ, मेरा आपके साथ ताल्लुक़ बहुत दुरुस्त है। लेकिन इस ताल्लुक़ के रास्ते में रुकावट बनने वाली हर चीज़ है, वो लौ में आती है। मसलन हमारी ज़िंदगियों में कहाँ लौ है? मुझे तो ऐसे लगता है कि आज के मुसलमान को भी दो ही चीज़ों की फ़िक्र है, या फ़िक्र माश, जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, और इसी मार्च में आप अपनी स्कूलिंग को भी लें, क्योंकि असल में हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि कल जॉब कर लें, डिग्री आ जाए। तो पहली चीज़ है फिक्रे माश, और दूसरी फिक्र है फिक्रे लगवियात। जॉब से आती किधर बैठे जाते हैं, कहते हैं मुझे ना सताओ, या सारा दिन ऑफिस में बैठे होते हैं कंप्यूटर के आगे काम करते हुए, और फिर घर आके टीवी के आगे। बताइए फिर ऐसे लोगों को फिक्रे आखिरत कहाँ होगी। सारा दिन आप काम करके थके, आपका जहन थका, तो फिर घर वाले भी हक समझते हैं कि अब ये थकी हुई आई है, अब इसको 2-3 घंटे टीवी देखने दो, अब इसको मूवी देखनी लाजमी है, तो दिमाग कहाँ काम करेगा। आप सोचिए कि जब हम सारे दिन के थके हारे बिस्तर पे आते हैं, तो अल्लाह ताला से चंद बातें करके इंसान उसी हाल में सोने लगता है। लेकिन जब हम उसके बाद आके एंटरटेनमेंट के नाम पे गंदी और बेहुदा चीज़ें देखते हैं, तो अल्लाह से ताल्लुक कब बनेगा? क्या लग की वजह से नमाजें नहीं छुटती? ये ड्यूल एक्शन है। आप अगर एक एरो डालें ना नमाज और लग्व के बीच में, तो पहला एरो जाएगा आपका नमाज से लग्व की तरफ। कैसे? कि इन सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, 21वें पारे की पहली आयत का हिस्सा है, कि बेशक नमाज फुखश और मुनकर से रोकती है। क्योंकि आज हमने एंटरटेनमेंट के नाम पे हर किस्म की फहाशी को अपने लिए जायज़ करार दिया। सर्टिफिकेट दे के हम देखते हैं, आप देखिए कि बंदे का मिजाज ही बदल जाता है, बिगड़ जाता है मिजाज। मजाक के नाम पे फुहश लतीफ़े सुनते हैं, इतने गंदे जुमले होते हैं बाज़ दफ़ा स्टेज ड्रामों में कि अल्लाह की बना, और लोग बेवकूफ़ बन के हंस रहे होते हैं। याद रखिए, लगवियात के आदि का मिजाज बड़ा बिगड़ जाता है। वो हंसने वाली बात पे नहीं हंसेगा, रोने वाली पे नहीं रोएगा, और सिर्फ टुचकर बाजियों पे हंसेगा, ढोंडेपन की बातें, और हंसता है, और सब हंस रहे हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं, माँ भी हंस रही, बाप भी हंस रहे हैं, कोई बेवकूफ़ वाली हरकतें करे, कहते हैं कितना मज़े की बात है। याद रखिए कि मोमिन अपने मिजाज को नहीं बदलता। आपको कहते हैं कि जन्नत की नेमतों में से एक नेमत कही गई कि ला तस्माऊ नफीहा लागिया, तुम नहीं सुनोगे उसमें लख बातें। कीलो काल कौसिप, और सुना उसका क्या हाल है, उसकी बेटी क्यों बैठी हुई है घर में, खैर तो है, उसकी बहू के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, वो फलां का क्या मामला है, आजकल क्या हो रहा है, ये कहाँ से सोफे आ रहे हैं, ये कहाँ से जा रहा है, ये जेवर कहाँ से आ गए, क्या ये सख्त लगवियात नहीं है? और 3-3 4-4 घंटे की जो हमारी शादी की तकरीबात हैं एक एक दिन में, वहाँ क्या हो रहा होता है, लग्व होता है या लग्व से एराज होता है? हर एक सोचे। देखिए कि महदूद जिंदगी में से ला महदूद जन्नत को पाना है, ये जुमला लिख लें, महदूद जिंदगी में से ला महदूद जन्नत को पाना है। इतना थोड़ा वक्त है मेरे पास, मेरे पास तो बहुत थोड़ा है, आपका मुझे नहीं पता, वल्लाही मुझे तो लगता है कि मेरे पास गिनती के दिन रह गए हैं, और अल्लाह को पता है दिन भी हैं कि नहीं। कहाँ वक्त है कि इंसान इसको ज़ाया करे? क्या मोमिन अपने कीमती वक्त को लग में लगाएगा? लिखिए, क्या मोमिन अपने कीमती माल को लग में लगाएगा? आज सिर्फ हम अपने हुस्न की आराइश पे हजारों लाखों लगा देते हैं, सजाते रहते हैं, 4-4 घंटे पार्लर्स में बैठे रहते हैं, मशीनों में, कहीं बाल मशीन में अटके हुए हैं तो कहीं स्किन पे कुछ लटका हुआ है तो पाँव एक दूसरी मशीन में। करिए, हद पे रहिए, क्या हुस्न की नुमाइश करनी है? कितने को हसीन लगेंगे हम? चले, बाहर की झुरियाँ आपने नुचवा ली, अंदर की कमजोरियों का क्या होगा? बाल कर लें काले, आपके गर्दन की ढलकापन बताएगा कि आपने अपने बाल काले किए हुए हैं। और याद रखिए कि हुसन जन्नत नहीं दिलाएगा, हसीन बनने की बजाय मोहसिन बने तो जन्नत मिलेगी। मोमिन वक्त गुजारता नहीं है, वो सर्व करता है, आखरत को बचा के नहीं रखता। और फिर अल्लाह उसके वक्त में कितनी बरकत डालता है। अपने वक्त को घंटों में नहीं, मिनटों में तोले, ये लिखें अपने पास, अगर आप चाहते हैं ना वक्त को तोलना है। कोई मुझे कहे ना आज क्या करेंगे, मैं कहती नहीं, ये बताएं अभी क्या करेंगे, इस 1 घंटे में क्या करना है, इन मिनट्स में, 60 मिनटों में क्या करना है, और हर सेकंड में क्या करना है। आप अपनी इकाई छोटी कर लें, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना, करें अपने दिन को छोटा। हम पहले ही सोचते हैं नहीं नहीं आज मैं नहीं कर सकती, क्यों, आज मैंने नहाना है। कुछ लड़कियों का ये मसला होता है, नहीं 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 आज हमने नहाना है, भाई क्या आखिरी नहाना है अपने आज, ये गुस्ले आखिर है, नहीं नहीं आज नहीं, आज वो मैंने किचन साफ करना है, तो क्या खैर है, आपने कब से नहीं किया साफ, रोज नहीं आप साफ करती? बस एक टारगेट देते हैं पूरे दिन में, वो आज रात तो शादी में जाना है, फिर कितने बजे जाना है, 8 बजे, तो क्लास तो 5 बजे, नहीं वो फिर तैयारी भी तो है ना, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, क्रीज ठीक है, ढीली तो नहीं हुई, अच्छा दो क्रीजें तो नहीं बन गई, ऐसे लगता है हर बंदे ने हमें माइक्रोस्कोप से देखना है कि ये कैसा इस्त्री किया हुआ जोड़ा पहन के आई है, और आप पहन के देखे आपके पहन के नीचे करने में कितनी सलवटें फिर पड़ चुकी होती हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, सॉरी, जिंदगी मुख्तसर है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आप कहते कोई बात नहीं, ना करें, इतने हम काम जो कर सकते हैं वही करें, काम तो वाकई हो जाएंगे, सच है, लेकिन मेरा हिस्सा नहीं डलेगा उसमें, मैं कहाँ उसमें, मुझे अपना वक्त डालना है, मुझे देखना है। तो याद रखें कि फलाह मुकम्मल कामयाबी का नाम है, इसके लिए एफर्ट, और ये कहाँ से एनर्जी मिलती है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। कोई काम मुश्किल लगे ना फौरन जाए नमाज पे खड़े हो जाए, ऐसे रास्ते सुझाएगा अल्लाह ताला आप सोच भी नहीं सकते, उम्र फारूक की तरह कि जब सफ बंदी करनी होती थी तो नमाज के लिए खड़े हो जाते थे कि अल्लाह ताला से इंस्ट्रक्शंस लें, लेकिन मसला तो फिर हमारी तो नमाजें ही ऐसी हैं, फिर हम करें क्या, जब नमाजें नहीं ठीक तो खुशू में कहाँ और फिर एराज कहाँ। जितने घंटे आप फन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे गलत चीज़ें या सही देखते हैं उसको काउंट करें, लिखें, फिर पूछें कल क़यामत के दिन इस वक्त का क्या हिसाब दे सकूंगी मैं। फिर इसके बाद देखिए कि जैसे नमाज से लग्व छुटता है ना, इसका ऑपोजिट भी है, लग्व से नमाज की तरफ जाए, जितना आपकी ज़िंदगी में लग्व आएगा ना नमाज का खुशू कम हो जाएगा। लोग कहते हैं झट से नमाज पढ़ लो, ड्रामे का टाइम है, फटाफट वो टाइम देखते हैं कि अच्छा ये ड्रामा होने वाला है नमाज पढ़ लें, और वो नमाज क्या होगी, फिक्र ही लगा होगा कि कुछ शुरू का हिस्सा मिस ना हो जाए। तो बहरहाल जब लग्व छुटा तो वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात को अदा करने वाले होते हैं। पूरे कुरान में ज़कात के लफ्ज़ के साथ ईताई ज़कात आता है, ऊतु ज़कात, ईताई ज़कात, यहाँ लफ्ज़ फ़ाइलून क्यों आया, यहाँ फ़ेल के सूरत में आया, क्या कहा कि ये ज़कात को अदा करने वाले हैं। अब क्या मतलब है इसकी बात, इसलिए एक वजह के फ़ाइलून आया है, दूसरी वजह यह कि ये मक्की सूरत है, का के दौर में ना तो भी नमाज फ़र्ज़ थी, हाँ नफली नमाज़ें होती थी, तो ज़कात का तो नसाब भी नहीं था। तो मुफस्सरीन और उलमाए कराम कहते हैं कि यहाँ ज़कात से मुराद तज़किया है, वो अपने नफ्स का तज़किया कर रहे होते हैं, और ये बात ज़्यादा दुरुस्त महसूस होती है। और आप दूसरे रंग में भी ले लें तो जिस तरह माल की ज़कात देते हैं वैसे नफ्स की भी ज़कात देते हैं। देखिए जिस तरह हमारे माल में से अल्लाह को हम हक देते हैं ना, अल्लाह के नाम पे गरीबों को खिलाते पिलाते हैं या ज़कात देते हैं ना, इसी तरह हमारे नफ्स का भी हक होता है, और वो क्या है कि अपने आप को गुनाहों से पाक कर लो, अपने आप को पाक करो, गलत चीज़ों से, ख़राब चीज़ों से अपने आप को रोको, तो तज़किया नफ्स। तज़किया क्या होता है, पहले तो यही कहूँगी कि आप इस मौजू को समझना चाहते हैं तो 2010 के दौरे कुरान का इंट्रोडक्शन सुन लें, जो इंट्रोडक्टरी सेशन था हमने उसमें काफ़ी डिटेल से तज़किया को समझा था कि ये मुसलसल अमल है, ड्यूल अमल है, सिर्फ अच्छी चीज़ों को पैदा करने का नाम तज़किया नहीं होता, बुरी चीज़ों को निकालना भी है, जैसे बीज डाला है तो सात जड़ी बूटियाँ भी निकालो, खाद डाली है तो अब उसके अंदर से कोई बेकार चीज़ों को निकालो, तज़किया मुसलसल अमल है। जिस तरह आप एक दफ़ा घर साफ करके बैठ नहीं जाते कि कर तो लिया था पिछले महीने फिर गंदा होता है, इस तरह नफ्स को भी हर वक्त पाक करना होता है। जो लोग अपने जिस्म की सफाई की तरह रूह की सफाई करना छोड़ देते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि वो उस पुराने फर्नीचर की तरह हो जाते हैं जिसके ऊपर कई साल से मट्टी पड़ पड़ के अब जम गई। जब नफ्स की हम सफाई नहीं करते ना, हम कहते हैं मैं साफ़ हूँ, मैं पाक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मुसलमान हूँ और मैं तो नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, लेकिन जब हम अपनी सफाई नहीं करते ना तो आहिस्ता आहिस्ता हम सख्त होने लगते हैं। जो मोमिन होगा ना वो सॉफ्ट होगा, बाहर से क्रस्ट है अंदर से नरम है, रोटी की तरह, देखें तो कड़क लगे जब तोड़ें तो मज़ा आ जाए, मोमिन ऐसा होता है, ये नहीं कि बाहर से नरम लगे और अंदर खाओ तो दांत ही टूट जाए। मोमिन बाहर बहुत सख्त लगता है, एक अच्छा लीडर या एक अच्छा मोमिन कौन होता है, जिसको देख के लोग कहें ये नाकाबिले तस्खीर है, बस डरें खौफ खाएं, लेकिन जब उससे वास्ता पड़े, उससे मामला पड़े तो कि इनसे तो नरम ही कोई नहीं है, हम तो ऐसे ही खौफ खा रहे थे। और सच्चा ईमान बंदे को इसी तरह का बनाता है। इसके लिए शर्त है कि इंसान अपने आप को पाक करे। सारी बुराइयों से तज़किया दिल के रास्ते से शुरू होता है। पहले दिल को पाक कीजिए। किससे? कुफर से, फिर शिर्क से, फिर बिदत से। फिर आप तज़किया कीजिए अपनी ज़ुबान का। कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर ज़ुबान को पाक करें। जैसे हमारे यहाँ बाज़ भोली भाली ख़वातीन बर्तन धोते हुए कलमे पढ़ रही होती हैं, क्योंकि इसको एक काम वाली ने हाथ लगा दिया था जो क्रिश्चियन थी। हाँ, तो ज़ुबान का तज़किया। फिर ज़ुबान का तज़किया हर अच्छी बात से। हदीसें याद करें, कुरान की आयतें याद करें। वो सारी बातें जो ज़ुबान की खूबियों में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं वो नोट कर लें। फिर बुरी चीज़ें छोड़ें ज़ुबान से। गीबत छोड़ें, बुराई छोड़ें, ताने छोड़ें, इल्ज़ाम छोड़ें, शिकायतें लगाना छोड़ें और इस तरह की बातें। फिर इसके बाद आ जाइए ज़ुबान के तज़किए के बाद कानों के तज़किए पे। सुने अच्छी बातें, अजान सुने, तकबीरात सुने, कुरान सुने, अच्छे अच्छे लेक्चर सुने, फिर बुरी चीज़ें छोड़ें। आप सुने कुरान और गाने ना छोड़ें कभी भी। हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून नहीं बनेंगे। आप एक बर्तन में एक तरफ से ठंडा पानी डालते जाएं, दूसरे से गर्म डालते जाएं, कभी भी गर्म पानी नहीं मिलेगा या ठंडा नहीं मिलेगा। चूँ चूँ का मुरब्बा बन जाता है। आज हमारा भी यही हाल हो चुका। हम अच्छी महफिलें भी नहीं छोड़ते लेकिन बुरी भी नहीं छोड़ते। आप एसी लगाएं और 7 दरवाजे खोल दें, कभी कमरा ठंडा नहीं होगा। हीट लगाएं और साथ ही फैन भी चला दें, कभी कमरा गर्म नहीं होगा। गुनाहों को छोड़ना पड़ता है और तज़किया गुनाहों को छोड़ने का नाम है। अपने आप को पाक करें और इसके अंदर जितना आप कामयाब होंगे उतना ही इंशाअल्लाह ताला आप फील करेंगे कि आपका लफ्ज़ से दिल हटेगा और उतना आपकी नमाज में बरकत आएगी। आपको वक्त भी बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छे तरह काम करेंगे। वरना अल्लाह के नबी ने जो कहा कि सबसे पहले जो चीज़ मेरी उम्मत से उठेगी वो खुशबू उठेगा। और आज देख लें, कहा कि आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कोई एक ख़ाशे दिखेगा तुम्हें। आज देखें नमाजी बहुत सारे हैं, ख़ाशीन कम है। कई नमाजी हैं जो लफ्ज़ को छोड़ ही नहीं पाते, कहते हैं क्या करें, मजबूरी है तो एंटरटेनमेंट है, नमाज तो पढ़ ली है अब फिर जाके पढ़ लेंगे इसके बाद। नहीं, मिन हुस्नुल इस्लाम ये तर्कुहु मा ला यानी। आदमी का हुस्न क्या है कि हर बेमानी बेमकसद चीज़ को छोड़ दे और फिर उसकी ज़िंदगी में पाकी आएगी, तहारत आएगी, वो अपने आप को खूबसूरत समझेगा, फिर वो अपने आप को दिन ब दिन पाक करेगा। देखिए हद कोई नहीं होती साफ़ करने की ना। आप सिर्फ अपना स्टैंडर्ड बदलते जाएं, आप देखेंगे किसी के साफ़ किए को आप दोबारा साफ़ कर लेंगे। इसी तरह अगर हमारा तज़किया हो रहा है तो हर वक्त इसमें कोशिश करें आगे से आगे बढ़ाने की। अपने आप को इंशाल्लाह आपको इससे और ज़्यादा मिलेगा, अच्छे तरीके से आप और काम करेंगे और एक वक्त आएगा कि वाकई आप बिल्कुल डस्ट फ्री हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अगली बात, वल्लज़ीनहुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। ये वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। फुरूज का लफ्ज़ फ़र्ज की जमा है। फ़र्ज लफ्ज़ी मानी में तो कहते हैं सुराख को, लेकिन इससे मुराद शर्मगाह है। दूसरा, फुरूज और फ़र्ज का एक मफहूम जो डिक्शनरी में आता है, ऐसी जगह जिस पर हमले बहुत हों और इंसान उसकी हिफाजत करे। आज तो लगता है कि कल्चर ही सारा फ़र्ज पर हमलों का है, चारों तरफ से इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि किसी तरह इसको नंगा कर दो, इसको इब्लीसियत के प्लान के अंदर इस्तेमाल कर लो। हिफाजत किस चीज़ की है यहाँ? शर्मगाह की हिफाजत से मुराद क्या है कि इंसान इसको नंबर एक छुपा के रखे, यानी ऐसा लिबास ना पहने कि जिससे उसकी शर्मगाह खुले। वो टू टाइट होकर भी हो सकता है और टू थिन होकर भी हो सकता है। गोया कि यहाँ शर्मगाहों के तज़किए की बात है। पीछे देखिए ना, तज़किए की बात हो गई, अब यहाँ से उसका अमली तरीका बताया जा रहा है कि तुम करो क्या, कि तुम अपनी शर्मगाहों को छुपा के रखो। और दूसरा इसका मफहूम क्या है कि उसको सही इस्तेमाल करो। अब उसकी ज़रूरत, उसका अमली तरीका अगली आयतों में बता दिया कि इल्ला अला अज़्वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम, बजुस अपनी बीवियों के और उन कनीज़ों के जो इनके हाथों की मलकियत हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो फ़ाइन्नहुम गैरु मलूमीन, तो ऐसे लोग बिल्ला शुबा मलामत नहीं किए जाते। अब यहाँ हम देखेंगे कि शर्मगाह की हिफाजत के साथ जो इस्तिस्ना दिया गया वो क्या है। کیونکہ اگلی آیت بھی ساتھ ہی چلے گی، پھر ہی یہ مضمون پورا ہوگا کہ تزکیہ کرو، شرمگاہوں کا حفاظت کرو، یعنی غلط استعمال نہ کرو، اس کو اوپن نہ کرو، کھولو نہ. ہاں مگر بیویاں اور لونڈیاں ہیں، بیوی تو سبھی کو متہ معروف ہے اور لونڈی پہ ہم بات بہت تفصیل سے کر چکے سورۃ نساء میں. آج اس کی کوئی پریکٹیکل صورت ہے ہی نہیں، اس لیے اس پہ بات کی ضرورت نہیں. کسی کو اس بارے میں تعلیم معلومات چاہیے تو وہ ہمارے اسی سیریز ہی کے سورۃ نساء کی جو تفصیل ہے اس کے پہلی آیت، جو پانچویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس کو سن لے. والمحصنات میں ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی تھی، لیکن یہاں ہم بات کریں گے فمن ابتغى وراء ذلك پہ، کہ جو حلال طریقوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے، اس سے مختلف راستے ڈھونڈے. فاولائک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، عادی ہیں، عدوف سے، دشمن ہیں اپنے خود. اب اس میں کیا آتا ہے، فمن ابتغى وراء ذلك میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے غیر فطری چیزوں میں، جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے کے آخری روپ میں ہم پڑھ چکے. یسألونک عن المحیط قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیط، پس بیویوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو. یہ ہے پہلی صورت وراء ذلك میں، یعنی بیوی کے ساتھ پیریڈز میں جسمانی تعلق قائم کرنا، اور یہ عورت کے لیے بھی تکلیف ہے، مرد کے لیے بھی، اور اس کے اندر گندگی بھی ہے. دوسری ہے چیز لواطت اور سحاق، یعنی عورت کا عورت کے ساتھ اور مرد کا مرد کے ساتھ تعلق جوڑنا. اس پہ ہم بات کر چکے سورۃ نساء کے تقریباً تیسرے رکوع میں، چوتھے پارے کی آخری آیتوں میں واللذانی میں تفصیل سے بات ہوئی. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. پھر اسی کے اندر جانوروں کے ساتھ غلط تعلق پیدا کرنا بھی ہے. کبھی نہ مانتے صحابہ کرام اگر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا، اور ہم بھی نہ مانتے اگر آج کے اس دور میں نفس کے تقاضوں کو اس طرح بے لگام پورا کرنے والے لوگ نہ ہوتے کہ جب انسان ان کی شہوت کو پورا نہ کر سکے تو جانوروں کے ساتھ ایسے تعلقات پیدا کر دیے. زہر الفساد والی کیفیت، کہ جہاں ہر بندہ اس کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح اس کی اگلی صورت ہے زنا، معروف بات ہے، جس کو ایڈلٹری اور فورنیکیشن دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی شادی شدہ شخص کا زنا کرنا یا غیر شادی شدہ کا زنا کرنا. اس کی تفصیلات اب اگلی صورت میں آنے والی ہیں، سورۃ نور میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. پھر ایک چیز رہ جاتی ہے وراء ذلکم میں، اور وہ کہہ کے خود سے لذت لینا. اس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ینگسٹرز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. بعض دفعہ جب جنسی جذبات غالب ہوتے ہیں، خاص طور پہ مردوں میں، لڑکوں میں اس چیز کی خواہش ہوتی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. اس میں مشت زنی بولتے ہیں اس کو اردو میں، ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کرنا. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اکثریت علماء کی اس کو بھی حرام قرار دیتی ہے، کیونکہ اس کے ایک تو اخلاقی اثرات ہیں کہ انسان جتنا ان چیزوں میں پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس سے اگلی چیز چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے نا، تو آپ کچھ نہ کھائیں تو تھوڑی دیر بعد بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ آزما کے دیکھیں کہ آپ کو بھوک لگ لگ کے ختم ہو گئی تھی نا، ایک دم آپ نے کوئی ایک نٹ منہ میں ڈال لیا، کوئی پینٹ مل گیا کھا لیا، بادام کھائے، اس کے بعد ایسی کھچ پڑے گی آپ کے پیٹ میں کہ دل چاہے کب جلدی کھائے. یہ جو اپٹائزرز کا طریقہ ہے کھانے میں، وہ یہی سوچ ہے کہ یہ بھوک بڑھانے کے لیے کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب جسمانی تقاضوں کا آپ دبا دیتے ہیں نا، پھر اس کی خواہش نہیں آتی. لیکن تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو خود ہی مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد ضرور اور دل چاہے گا. اسلام نے تو اس کا راستہ پہلے ہی بند کر دیا کہ ایک مرد، لڑکی، لڑکا شادی کے قابل ہے، دیکھو عقل آ گئی ہے، رشد آ گئی ہے، چلو کر دو شادی، خواہش پوری ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر روزے رکھو. ٹھیک ہے، ارے کی شادی ہوتی بھی نہیں. اب آج کے دور میں 12 سال یا 13 سال کے لڑکے کی اب شادی کریں گے تو وہ اور ہی خرابیاں پیدا ہوں گی نا. جب 8 سال 9 سال کی لڑکی کی کریں گے تو پھر کریں کیا؟ نگاہوں کو پاک رکھیں، لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، تزکیہ کریں، ایسی گندی چیزیں مت دکھائیں، لغو سے اعراض کریں. آج آپ دیکھیں کہ جتنا لغو عام ہو گیا اتنی لغویات عام ہو گئیں. چاروں طرف سے آپ کو دنیا میں یہی یلغار دکھتی ہے، سیکس، رومانس، لو، یہی لگتا ہے کہ ڈکشنری کے معروف لفظ ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چاروں طرف یہی باتیں ہوتی دکھتی ہیں آپ کو. اور شادی کے 18 سال تک انتظار کرو، نہ ہوں گے 18 سال کے اور نہ شادی کریں گے، اور گندگی جتنی مرضی کھول لیں. تو لہٰذا ایسے نوجوان لوگ जो भी है मेल या फीमेल, उनको अगर वाकई ज़रूरत महसूस होती है पहले अपने पूरे मुमकिन तरीके से नमाज़ों को ज़िंदा रखें, लफ्ज़ से एराज करें और हालात को देखते हुए जल्दी से जल्दी जायज़ तरीके से इस चीज़ को पूरा किया जाए, बढ़ती जाएगी चीज़। बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है बंदे की ख्वाहिश। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी बंदे को उसकी वसअत से ज़्यादा नहीं आजमाता, और बंदे को अपने आप को फिर भी पाक रखने की कोशिश है। और इसमें जो अजर मिलेगा वो भी जिहाद का अजर है इंशाल्लाह, क्योंकि जिहाद बिन नफ्स है, अपने नफ्स पे काबू पाना। भूखा होता है खाना खाएगा तो फिर भूख मिटेगी ना, नहीं खाएगा तो सब्र करेगा तो अजर तो मिलेगा ना। तो ऐसे लोग फिर इस सोच के साथ अपने आप को पाक रखें कि अल्लाह ताला हमें इसका कल बाद में अजर देंगे और इंशाल्लाह हम इसके बाद अच्छे तरीके से इस चीज़ को पाएंगे। अब देखिए, वरना तो अब जब शैतान की बातों पे आएंगे तो बेलगाम होंगे ना। और इस मौजू पे भी आप देखिए दो इंतहाएं हैं। एक लोग वो होते हैं कि जो बिल्कुल ही शादी और ताल्लुक और जिस्मानी ताल्लुक को गुनाह समझते हैं और पाकीज़गी और तकवा के ख़िलाफ़ समझते हुए बाद शौहर अपनी बीवियों और बीवियां शौहरों को पास नहीं आने देती, ये भी इंतहाई हद से बड़ी हुई बात है। और बास कहते हैं कि बस फ्री सेक्स कर लो। इस्लाम ने दोनों बातों को जमा करके फरमा दिया कि फ़ौलाइक हुमुल आदून, ऐसे लोग फिर हद से बड़े हुए हैं। और दुआ करें कि आज के दौर में वाकई इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना जितना मुश्किल है, अल्लाह ताला इन नस्लों के लिए उतना ही आसान कर दे। किसी भी माशरे की कामयाबी के दो बुनियादी सोर्सेज होते हैं। एक यह है कि वहाँ मुआशी निज़ाम मुस्तहकम हो, यानी इकोनॉमिक्स अच्छी हो, और दूसरा सेक्स डिसिप्लिन्ड हो। जिस सोसाइटी के अंदर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर दिखेगा वहाँ कभी खुशहाली नहीं आती। आज के दौर का यही मसला है, लोग खुशहाल हैं खुश नहीं है। इस्लाम जो ख्वाहिशात को पूरा करने का रास्ता बताता है ना, उसमें खुशी भी है और खुशहाली भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसा खूबसूरत इस्लाम लोगों के सामने पेश करें ताकि लोग इसी के ज़रिए इसकी तरफ आने लगें। और हकीकत है कि ऐसा ही तरीका लोगों को इस्लाम की तरफ ले आता है। अब यहाँ जहन में चंद सवाल उठ सकते हैं लोगों की तरफ से कि माँ बाप ही शादी करने में देर कर देते हैं, उनको पसंद ही नहीं आ रहा लड़का क्योंकि उनके ख़ानदान का नहीं, तो क्या किया जाए? फिर वही बात है कि उसके ऊपर इंसान कन्वर्सेशन करके अपनी बात समझा सकता है। और अगर किसी का बेटा कहता है ना कि मेरी शादी कर दो, यकीन करें गोरी मिले, काली मिले, छोटी मिले, बड़ी मिले, उम्र की नेक है तो कर दें। बस माँ बाप इज्जतों पे ठप्पे से ठप्पे लगवाते जाएंगे, लेकिन सिर्फ उनको अपना स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो अपने आप को और बच्चों को भी गुनाहगार करते हैं। तो इसमें भी फिर जिम्मेदारी माँ बाप की आती है। हम सबको सोचना चाहिए कि आज हमारे यहाँ निकाह मुश्किल क्यों है, क्यों हमें इतने अपने इर्द गिर्द यंगस्टर्स मिलते हैं जो अभी तक शादी की नेमत से महरूम है। इसके अंदर हमारे खुद साख्ता किस्म के मेयार है ना, कहीं रस्म व रिवाज हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही जहेज की लिस्टें बनाते हैं, फिर कोई दे ना सके तो उसकी बुनियाद पे हम अपने आप को और दूसरों को परेशान करते हैं। पीछे वही बात है मादा परस्ती, जिसने हमारी सोच को बदल दिया। हम इस दुनिया को जन्नत बनाने में लग गए, बच्चे हराम में पड़ गए, हमें होश ही नहीं। हम और डॉलर्स कमा रहे थे, बच्चे और ज़्यादा गुनाह की तरफ चले। हम सिर्फ बचपन में ही बच्चों की देखभाल करते हैं, हालांकि जवानी में इनकी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्लाम की खूबियों से बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। जब जिस्म की हिफाजत की बात हुई तो साथ ही अगली बात में माल और दूसरे ओहदों की रियायत की बात हो गई कि वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राउन, बेशक वो मोमिन भी बामुराद हैं जो अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं। यहाँ देखिए आपको इज्तमाईयत की तरफ बुलाया जा रहा है कि जैसे अपने जिस्म की हिफाजत करके आने वाले शौहर या बीवी के हक को महफूज कर रहे हो ना, इसी तरह आप तुम अपनी अमानतों और अहदों को भी पासदारी करो। देखिए मोमिन कौन है? बेजरर शख्स, लिख लें। जैसे फूल पड़ा हो ना कहीं तो उसकी खुशबू आती है ना, मोमिन भी एक फूल होता है, जन्नत का फूल है मोमिन, जहाँ से गुजर जाता है अपनी महक दे के जाता है, छुए कोई तो लोगों को नरम लगता है। कभी भी मोमिन किसी को दुख नहीं देगा, कभी उसको पाते पाते कोई कांटे से गुजर भी जाए ना, क्योंकि फूलों के साथ कांटे होते हैं, तो मोमिन फौरन उसकी तलाफी करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ अमानतों और अहदों की बात में अमानात अमानतुन की जमा है और राउन राई की जमा है, और राई कहते हैं शेफर्ड को, यानी जिस तरह एक चरवाहा अपनी बकरियों पे, अपनी गायों पे और अपने ऊँटों पे नज़र रखता है ना, इस तरह मोमिन अपनी जिम्मेदारियों पे नजर रखता है, अपनी कमिटमेंट्स पे नजर रखता है। वो ये नहीं कहता कह दिया था बस ख़त्म, वो निभाता है। वो कहता नहीं, वो निभाता है। कमिटेड शख्स होता है। और अहदों में सबसे बड़ा अहद तो हमारा अल्लाह से है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शिर्क नहीं करता। फिर अमानत, हर वो जिम्मेदारी जो इंसान खुद अपने ऊपर लेता है, चाहे बोल के ले चाहे अमल से बताए। हमारा जिस्म भी अमानत, हमारा वक्त भी अमानत, हमारी चीज़ें भी अमानत। इसलिए हम खुदकुशी नहीं कर सकते, हम अपनी आंखें निकाल के किसी को अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, किसी को अजियत नहीं दे सकते, तो खुद को भी नहीं दे सकते। फिर हमारे बच्चे हमारी अमानत, क्या हमने इनकी जिम्मेदारी अदा की है? हर एक खुद सोच सकता है। फिर हर ओहदा, हर जिम्मेदारी अमानत। आप स्टूडेंट हैं तो आप भी अमानतदार हैं, आपने इस वक्त का हिसाब देना है, आपने इस कमिटमेंट को निभाना है। अगर हम उस्ताद हैं तो हम भी आपके सामने ना हों लेकिन अल्लाह के सामने तो हम भी जवाबदेह हैं। माँ बाप अमानत हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ। और ख़यानत क्या है? उसको ना निभाना। नाम के तालेब इल्म बन जाएं, जिम्मेदारियाँ ना निभाएं, और नाम के बड़े बन जाएं लेकिन जिम्मेदारियाँ निभाते हुए हम पीछे हों। मुनाफिक की अलामतों में 3 अलामतें हैं, जिसमें एक अलामत अपनी अमानतों में ख़यानत करते हैं। आपको लग रहा है ना कि मुफ्लिह बनना सऊबतों और मुशक्क़तों का सफ़र है, हम तो आसान समझते। शेर भी है ना अल्लामा इकबाल का कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान बनना, ये तो कांटों का सफ़र है। पसीने पसीने हो जाता है मोमिन, उसके तो माथे पे पसीने आते हैं। अल्लाह मैं क्या करूं, एक काम सही कर रहा हूं तो दूसरी तरफ छूटने लगता है, एक को निभाता हूं तो दूसरा नहीं। और इंसान अपनी मंजिल तक तभी पहुंचेगा जब सारे मरहले तय कर लेगा। और जब फसल कटेगी, वो दिन किसान की, उसके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। वही फसल काटता है जो पिछले मरहले तय करे। हमने सूरह बकरा में जब मुफ्लहून को देखा था तो किसान से रिलेट भी किया था ना, वही काम मोमिन को भी करने हैं। सो नहीं सकते आप, अच्छा किसान कभी नहीं सोता, उसकी ज़िंदगी में बहुत काम होते हैं। वो फजर पे भी उठेगा, उसको पानी देना है, कहीं बीज डालना है। इसलिए सच्ची ईमानदाराना ज़िंदगी सुस्त ज़िंदगी नहीं होती। इतना कुछ करोगे तो बात फिर कहाँ आई, वल्लज़ीनहुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, ये लोग अपनी नमाजों की पूरी हिफाजत करते हैं। अगर आप आयत नंबर 2 को और 9 को 2 ब्रैकेट्स बना लें तो मोमिन की पूरी ज़िंदगी के 2 ब्रैकेट हैं नमाज की सूरत में। पीछे था खुशियू, शुरू में खुशियू पे जोर दो, बच्चों को जिसको भी सिखाओ, खुद को, और पढ़ते पढ़ते फिर आखिर में युहाफिज़ून बन जाओ। नमाजों के वक्त पर नज़र रखो, ऐन वक्त पर बाज़ार के लिए ना निकल जाओ। हिकमत है नमाजों के वक्त पे नज़र रखने में कि बंदे का वक्त मैनेज होता है। असल में ये टाइम मैनेजमेंट है जो 5 नमाजें सिखाई गई। वक्त पे पढ़ो, हिफाजत करो, नमाज पढ़ी है तो उसको निभाओ भी। ये ना हो कि नमाज में जो कह के आते हो अमली ज़िंदगी में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ करो। ये सारे काम करोगे तो उलाइक हुमुल वारिसून, यही लोग हैं वारिस, अब मिलेगी जन्नत। क्या अल्लज़ीन यरिसून अल-फ़िरदौस, ये विरसे में पाएंगे जन्नत को। विरसा क्यों? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा वहीं से तो निकाले गए थे, तो माँ बाप की चीज़ असल में विरसा ही होती है। और दूसरी इसकी तफसीर कि अमलों के विरसे में मिलेगी। आज अमल करेंगे तो कल विरासत मिलेगी, आखिर में मिलेगी ना। जो काम आज कर रहे हैं इस पे नहीं मिलेगी, जिस पे मरेंगे उस पे मिलेगी। इंजामे कार के तौर पे जन्नत मिलेगी, नतीजे के तौर पर जन्नत मिलेगी। अब खाना पकाएं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर में जला दें क्या होगा, बेजायका। आज अच्छे अमल कर रहे हैं मत खुश हों, दुआ करें अल्लाह मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम बेहतरीन काम हो, मेरी ज़िंदगी को आखिर में खूबसूरत कर दे। मुझे लफ्ज़ में नहीं लज्जत मिले, मुझे नेकी में मिले। अल्लाह के नबी की एक बड़ी प्यारी दुआ है, मज़नून दुआओं में आपको मिल सकती है, कि जिसमें बंदा तड़प के अल्लाह को कहता है, अल्लाह जब लोग इस दुनिया से अपनी आंखें ठंडी करें तो मेरी आंखों को तू इबादत से ठंडा कर दे। फ़क्र आइनी में इबादत, कुछ इस तरह के लफ्ज़ हैं कि इंसान में करार पाता है। इसी तरह एक तीसरी वजह भी है वारिसून कहने की, और वो कह के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से हर एक का एक घर जन्नत में है और एक जहन्नुम में। जो जन्नत में जाता है ना, उसका जहन्नुम का घर बाकी जहन्नमियों को दे दिया जाएगा गोया के विरसे में। इसी तरह जो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे ना और जहन्नुम में चले गए ख्वाहिशों के पीछे भागने की वजह से, उनके वो घर विरसे के तौर पे दूसरे जन्नतियों को मिल जाएंगे। सूरत अल अराफ में हम बहुत खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को देख चुके कि कैसे जन्नती वहाँ जाकर खुश होंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हुम फीहा खालिदून, मिलेगी क्या फिरदौस। फिरदौस क्या है? जन्नत का आला मुकाम। सही बुखारी की रिवायत है, अगर अल्लाह ताला से जन्नत की तलब करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि इसकी छत रहमान का अर्श है और यहाँ से जन्नत की सारी नहरें जारी होती हैं। क्या खूबसूरत जगह होगी। इसीलिए तो बीबी आसिया ने कहा था कि रब इब्नि ली इंदक बैतं फिल जन्ना, ए अल्लाह अपने बिल्कुल पास जन्नत दे। मैं सोचती हूँ वो क्या जन्नत होगी जहाँ जाके फिर अल्लाह ताला से बातें ना हो, अल्लाह ताला से कुर्बत ना हो, अल्लाह ताला से बंदा दुख सुख रास न्यास ना करे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अमल की तौफीक दे, हम पूरे तरीके से दीन के अंदर आए, नमाजों की हिफाजत में पहुँचें, वाकई ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ हमें नमाज लगे, हम पूरी सुन्नतों के साथ इसको पढ़ें, तहारत का अहतमाम करें, वक्त की पाबंदी करें, वाकई इसको इस तरह सीरियस लें जैसे हमारी कहीं अपॉइंटमेंट है, कहीं हमारी कोई मीटिंग है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वो देगा। आप देखिए कि किसान 1 फुट की जगह 2 फुट ज़मीन खोदे तो बेकार होगी ना। इसी तरह इंसान जब इस दुनिया में थोड़ी सी जगह चाहिए थी उसकी बजाय ज़्यादा चीज़ों में पाँव पसारता है ना, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि फिर उसका ज़रूर जन्नत का जो टारगेट है वो अचीवेबल नहीं रहता। आइए यहाँ तक अब तिलावत सुनते हैं और फिर आगे चलेंगे, अपनी असल औकात को देखेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.